मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 1 जून 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल अमेरिका की खूबसूरत हरी भरी धरती से अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसी क्रम में स्वागत करता हूं मैं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं अनिल कुमार इलाहाबाद से, बजरंगी कुमार मधुबनी बिहार से, शोभित पटेल जबलपुर से, गणेश प्रसाद आपने दो जगह के नाम दिए हैं गोवा / बालाघाट मध्य प्रदेश से, वैभव लोखंडे सतारा से, रियासत हुसैन देवरिया उत्तर प्रदेश से और राजदीप घोष आसनसोल पश्चिम बंगाल से। तो अनिल, बजरंगी, शोभित, गणेश, वैभव, रियासत और राजदीप आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी पूरी टीम आप लोगों के स्वागत के लिए की तैयारी में लगी हुई है। आपकी कैसे क्लासेस होनी है, क्या लेक्चर्स होने हैं, क्या प्रेजेंटेशन होने हैं, उन पर हम लोगों ने अभी से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया है, कर दिया है। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था भी किस तरीके से होनी है। तो मित्रों जैसे जैसे आप लोगों के आने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ी हुई गतिविधियां और सक्रियता भी बढ़ती जा रही हैं और नो डाउट कि उस दिन की बहुत व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा है जब पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक हॉल में बैठा हुआ होगा और हम सब आमने सामने बैठकर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे होंगे कि आईएएस कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मित्रों अभी मैंने आपसे एक स्पेशल बात कही वो ये अमेरिका की खूबसूरत हरी भरी धरती से। दरअसल हुआ ये कि कल शाम को यहाँ न्यूयॉर्क के पास ही एक कवि सम्मेलन था जिसमें इंडिया से 3 कवि आए हुए थे। उन तीनों कवियों के सम्मेलन में जब हम लोग गए थे तो एक कवि ने जो बात कही वो बड़ी टची बात थी और उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 50 दिनों से वे अमेरिका में हैं और 16 जगह अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रोग्राम करते हुए वो यहां पहुंचे हैं न्यूयॉर्क शहर। और खासकर वो जितने भी कवि थे उसमें से तीनों के तीनों कवि ऑलमोस्ट दिल्ली के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो बात कही कि दिल्ली में हमारे फेफड़ों में प्रदूषण के कारण जो घुटन होती थी अमेरिका के इस वातावरण में आकर के वो बड़ा खुला खुला और हल्का हल्का मैपन सा महसूस हो रहा है, ये उन्होंने बात कही। नो डाउट मित्रों इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका न केवल बहुत साफ सुथरा ही शहर है, पूरा का पूरा देश है कहना चाहिए, शहर नहीं सॉरी, बल्कि बहुत हरा भरा भी है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। एक बात जो मैं खासकर यहां आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो ये कि अगर आप ज्यादा नहीं 100-125 साल पहले के इतिहास में चले जाइए, चाहे फिर वो अमेरिका का इतिहास हो या यूरोप का इतिहास ही क्यों ना हो, खासकर हम लोगों के दिमाग में अमेरिका और यूरोप को लेकर के एक बहुत ही एक रोमांटिक इमेज सी बनी हुई है। रोमांटिक इमेज इस मायने में कि ये जो देश हैं ये महान हैं, ये बहुत डेवलप्ड रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं और बड़े शिक्षित हैं और बड़े डिसिप्लिन हैं, ये सारी बातें हम लोगों के दिमाग में हैं। नो डाउट कि यदि हम इन पिछले 100 साल की बात करें तो वो ऐसा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इससे थोड़े से पहले के इतिहास में चले जाएं तो आप देखेंगे कि यही देश कितने अव्यवस्थित थे, कितने ज्यादा आप कह लीजिए कि पिछड़े हुए थे, चाहे आप आर्थिक रूप से ले लें, चाहे आप टेक्नोलॉजिकल उस तरीके से जीवन शैली के रूप में ले लें। जो कुछ भी इन लोगों ने तरक्की की है मित्रों, ये सारा का सारा चमत्कार पिछले 100-125 सालों का चमत्कार है। और वैसे भी अमेरिका तो खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से ये दिखाई देने लगा था कि ये देश कुछ है और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत प्रोमिनेंटली ये पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप पर इमर्ज हुआ। मित्रों जो बात सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो ये है कि ठीक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी जगह पर है, औद्योगिकीकरण चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए, तभी हम आर्थिक रूप से डेवलप कर सकते हैं। और आर्थिक रूप से जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो जीवन स्तर है ऊपर नहीं उठेगा। जीवन स्तर से ही जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हमारी शिक्षा भी है, हमारा स्वास्थ्य भी है, हमारी सभ्यता भी है, इन सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं मित्रों। लेकिन मुझे एक बात बहुत गहराई से महसूस होती है, वो ये कि मान लीजिए कि हमारे पास आर्थिक विकास के कोई साधन नहीं है, तो क्या हम जीवन भर असभ्य, असंस्कृत, पिछड़े हुए रहने के लिए बाध्य होंगे? क्या हम अशिक्षित ही रह जाएंगे? क्या हमारा पूरा का पूरा देश बीमारियों का ही शिकार होगा, हमारा या कोई भी छोटा सा देश हो? तो क्या आर्थिक शक्ति, आर्थिक स्थिति ही सर्वोपरि है, या उससे परे भी कोई चीज है जो हमें ताकतवर बनाती है, जो हमें महत्वपूर्ण बनाती है और जो हमारे जीवन को भी सुंदर और सुखमय बनाती है? मैं तो कुछ समय से मैं इस बात पर यहां आने के बाद से लगातार सोच रहा हूं और मुझे वो बात दिखाई भी दे रही है कि नहीं, अर्थव्यवस्था बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। मित्रों, चाहे आप अमेरिका में जाएं, चाहे आप यूरोप के देशों में जाएं, ठीक है, उनके पास आर्थिक शक्ति है और उस आर्थिक शक्ति के पीछे बहुत ठोस कारण है। चाहे तो उनका औद्योगिकीकरण बहुत अधिक हो गया है, चाहे दूसरे माध्यमों से उनकी जबरदस्त आय हो रही है, जैसे यूरोप के बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, चेक जैसा कंट्री है, स्लोवाक जैसा कंट्री है, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वहां का टूरिज्म इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि उनके पास दुनिया भर का पैसा आ रहा है। आप मॉरिशस को ले लीजिए, मॉरिशस को तो हम एक तरह से मिनी इंडिया इस मायने में कहते हैं कि वहां बहुत बहुत से भारतवंशी बसे हुए हैं। उनके पास कोई बहुत बड़े आर्थिक स्रोत नहीं है, लेकिन टूरिज्म को उन्होंने इतना डेवलप कर लिया है और सुगर केन के उत्पादन को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वो एक तरह से डेवलप्ड कंट्री जैसा हो गया है। तो मित्र, दूसरे स्रोत भी बहुत से होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है, जो मैं बहुत गहराई से महसूस कर रहा हूं, वो है करेक्टर ऑफ द सिटीजन्स, कि जो उस देश के नागरिक हैं उनका चरित्र कैसा है। और देखिए, जब मैं चरित्र की बात कह रहा हूं तो मेरे फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए चरित्र की डेफिनेशन क्या है। वो बहुत ही एक विशाल कैनवास में चरित्र अपने आप को चित्रित करता है, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी है, ईमानदारी भी है, और ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति ही नहीं, अपने प्रति भी ईमानदारी है, उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता है, दूसरों की केयर करना भी है, डिसिप्लिन भी है, रूल्स और रेगुलेशन के प्रति सम्मान की भावना है, ये सारी की सारी चीजें करेक्टर में आती हैं। मित्रों, परसों दोपहर के करीब 11:30-12 बजे होंगे और हम लोग एक लॉन्ड्री में गए थे जिनके यहां हम रुके हुए हैं, उन्होंने अपने कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए दिए हुए थे तो हम लेने गए थे। तो मैंने देखा कि लॉन्ड्री के काउंटर पर पहले से ही दो लोग अपने कपड़े ले रहे थे, तो हम लोग रुक गए, अपनी बारी का इंतजार करने लगे। फिर हम लोगों ने लॉन्ड्री कपड़े लेकर के आए, उन्होंने लॉन्ड्री के कपड़े दिए, फिर मेरे साथ जो गए थे उन्होंने पेमेंट किया। तो इस बीच में करीब 7-8 कस्टमर्स और आ चुके थे, जिसमें महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी, पुरुष भी थे, एक मिले जुले लोग थे, मिले जुले उम्र के भी लोग थे। तो मैंने देखा कि ये सारे के सारे कस्टमर्स हम लोगों के पीछे बिल्कुल लाइन बनाकर खड़े हुए थे, ये नहीं कि इधर उधर बिखरे हुए, बकायदे पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। और जो उससे भी बड़ी बात मुझे लगी वो ये कि दो लोगों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस था, मतलब आप ये कह लीजिए कि इतना डिस्टेंस तो था ही कि उन दो लोगों के बीच में डेढ़ आदमी और आ सकते थे, डेढ़ आदमी, इतना स्पेस था। तो वो स्पेस को बीच में छोड़ करके खड़े थे और उसका नतीजा ये हुआ था कि वेट करने वाले 7-8 लोग होंगे, जिसमें तीन व्यक्ति कस्टमर जो थे वो दरवाजे से बाहर खड़े थे, वो फुटपाथ पर आ गए थे, लेकिन वो खड़े थे और उतना स्पेस को बनाए हुए थे। मतलब उनको ये नहीं लगा कि अगर हम इस स्पेस को थोड़ा थोड़ा कम कर दें तो सभी लोग आराम से शॉप के अंदर ही आ जाएंगे। नहीं मित्रों, वो अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम के प्रति बहुत ज्यादा सम्मानपूर्ण रवैया अपनाते हैं। लाइन से लेना है और खड़े होकर के बकायदे बीच में डिस्टेंस रखना है, ये उनका एक डिसिप्लिन है, उनका एक नियम है, और उस नियम का पालन करने के लिए यदि उन्हें फुटपाथ पर भी खड़ा होना पड़े तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने देखा हमारे यहां एक तो लाइन से ही खड़े हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, खड़े हो जाएंगे तो फिर उनके अधैर्य देखिए कि भैया जल्दी करो और क्यों देरी लगा रहे हो, और धक्का मुक्की हो रही है और बीच में तो गैप होने का सवाल ही नहीं है, बेचारी हवा किसी तरह से उस बीच से गुजर जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों जो मैं करेक्टर की बात कह रहा हूं वो मैं इस करेक्टर की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। मुझे अपने मोबाइल के लिए सिम लेना था, यहां लोकल यूएसए की सिम लेनी थी। हम लोग एक शॉप पर गए और जब हम लोग वहां पहुंचे तो शॉप बंद थी। तो मेरे साथ जो गए थे वो कार से उतरे और बोले कि बस दो मिनट के बाद शॉप खुल जाएगी। तो मैंने पूछा कि दो मिनट के बाद क्यों? बोले इसलिए कि अभी 9:58 हुए हैं और ये 10 बजे शॉप खुल जाएगी। मैंने कहा क्या गारंटी है कि 10 बजे शॉप खुल जाएगी? और हम लोग इतने में बात ही कर रहे थे तो 10 बजे होंगे, अगर कोई घंटी होती तो जैसे ही वो घंटी 10 बजाती वैसे ही उस शॉप का शटर ऊपर उठ रहा था। ये टाइम की इंपॉर्टेंस है। तो ये जो मैं करेक्टर की बात कर रहा हूं, सिटीजन्स के करेक्टर की बात कर रहा हूं मित्रों, वो इसलिए कह रहा हूं कि जो सिटीजन्स का करेक्टर होता है, मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। इसे आप ठीक कर लीजिए, इसे हम ठीक कर लें तो हमारे पास जो छोटे छोटे भी रिसोर्स अगर होंगे तो बहुत बड़े बन जाएंगे, और अगर ये करेक्टर वाला पार्ट गलत है तो हमारे पास बड़े बड़े भी रिसोर्स होंगे तो वो छोटे बन जाएंगे। और मित्रों जिस बात को मैं अभी कंट्री के संदर्भ में कह रहा हूं वही बात हमारे इंडिविजुअल लेवल पर भी लागू होती है। यदि हमारे पास करेक्टर है तो यदि हमारे पास योग्यता कम भी है, क्षमताएं कम भी हैं, तो हमें बड़ी बड़ी उपलब्धि मिल जाएंगी, और यदि योग्यताएं बहुत हैं क्षमताएं भी बहुत हैं लेकिन करेक्टर का ये पार्ट नहीं है तो मुझे लगता है कि उपलब्धियां मिलना मुश्किल होता है, या बड़ी बड़ी क्षमताओं के बावजूद भी जो उपलब्धि मिलेगी वो छोटी रह जाएगी। दोस्तों क्या आप इसे अपने सिविल सर्विस के प्रिपरेशन पर लागू कर सकते हैं? मैंने जो करेक्टर की बात कही है वो आपको लेकर चलना चाहिए दोस्तों, कि आप मैनेजमेंट टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, अपने उद्देश्यों के प्रति कितने ज्यादा कमिटेड हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। इन सारी चीजों को जब आप लेकर के चलेंगे और थोड़ी सी लंबी योजना बना लेंगे तो पहाड़ से लगने वाली ये सिविल सर्विस आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत यात्रा आपके लिए बन जाएगी। तो दोस्तों आज के मोटिवेशन वाले पार्ट में इतना ही। अब मैं आता हूं कल के अपने एआईआर न्यूज पर। मित्रों एआईआर न्यूज में कई सारे पॉइंट्स थे, मुझे लगता है जिनको सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जिनके बारे में जानना ही चाहिए। जो सबसे बड़ी खबर है मैं समझता हूं जिसके हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे वो है एक रैंक एक पेंशन। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, मुझे मालूम है कि ज्यादा तो मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन 1990 के आसपास से कम इसके बारे में हम लोग सुनते रहे, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, लेकिन ये कभी लागू हो नहीं पाया। भी तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये वन रैंक वन पेंशन क्या है। पेंशन आप जानते हैं कि जब भी एक निश्चित समय तक आप सरकार में काम करते हैं, जैसे सिविलियंस के लिए 20 ईयर्स है, अगर आप सरकारी तंत्र में 20 साल तक नौकरी करते हैं तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये एक नियम है। अब हालांकि उसको काफी कुछ बदला गया है, अब उसको एक दूसरे फॉर्मेट में डाल दिया गया, लेकिन मैं एक सामान्य रूप में बात कर रहा हूं। उससे कम अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर पेंशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, पात्रता नहीं होगी। फिर आप जब तक जीवित रहते हैं तब तक आपको एक निश्चित रकम सरकार देती रहती है, और ये एक सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार होता है, क्योंकि सरकार ये मान करके चलती है कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पीरियड थे वो सरकार को दिए हैं, समाज को दिए हैं, या पूरे समय तक पूरे 60 साल की उम्र तक आपने चूंकि एक तंत्र में काम किया है, तो अब जबकि आप काम करने लायक आपका शरीर नहीं रह गया है या क्षमताएं नहीं रह गई हैं, तो ये मतलब नहीं है कि सरकार आपका ध्यान रखना छोड़ दे और आपको किनारे कर दे, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं तो आपकी तब भी रहेंगी ही, तो वो सुरक्षा के तहत पेंशन दी जाती है। जो आर्मी में है, आर्मी में थोड़ा सा पेंशन का एक अलग सा सिस्टम था। देखिए पूरी की पूरी सर्विस को हम खासकर अगर मोटे तौर पर करें तो दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सैन्य और एक होता है सिविलियन जिसको असैन्य कहते हैं, यानी एक सैनिक आर्मी जो सर्विसेज होती हैं वो एक मिलिट्री सर्विसेज में आती है। तो वहां क्या था मित्रों की एक अलग अलग तरह की पद्धति थी। पहले यह पद्धति थी कि जैसे सरकार में, मैं आपको बताऊं तो सरकार में ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही जैसा पेंशन, एक ही जैसी पेंशन मिलेगी। सरकार का में ये कि आप जिस पद से रिटायर हुए हैं तो आपको आखिरी समय में जितनी सैलरी मिल रही थी, जिस महीने में आप रिटायरमेंट ले रहे हैं या रिटायर कर दिए गए हैं, उसमें आपको जितनी सैलरी मिल रही थी उस सैलरी के आधार पर आपका कैलकुलेशन हो जाता है था कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यानी कि हर व्यक्ति को अलग अलग पेंशन मिलेगी, लेंथ ऑफ सर्विस, ड्राइंग कितनी आपको पेंशन मिल रही है, कब आपका प्रमोशन हुआ, तो बहुत सी चीजें उसमें काउंट करती हैं, मैं उस पे नहीं जाता। आपको यह भी मालूम है कि पे कमीशंस बैठती हैं, जिसको हम वेतन आयोग कहते हैं। तो वेतन आयोग 10 साल में बैठता है और वो सरकारी, जो सरकार में जो सैलरी दी जा रही है उसकी पूरी समीक्षा करता है, कार्य प्रणाली की भी समीक्षा करता है और सरकार को रिकमेंड करता है कि भाई इनकी सैलरी इतनी बढ़ा दी जानी चाहिए, प्रमोशंस के एवेन्यू करने चाहिए, जो जो भी सरकारी तंत्र के बारे में जरूरी होती है, नौकरशाह के बारे में जरूरी होती है, कर्मचारी अधिकारियों के बारे में अपने रिकमेंडेशंस देता है और फिर उन रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट विचार करती है, कुछ को स्वीकार करती है, कुछ को अस्वीकार कर देती है, जैसा भी गवर्नमेंट को ठीक लगता है वो निर्णय लेती है। तो मित्रों ये जो पेंशन थी, पेंशन के बारे में होता यह था कि पहले सैनिकों को पेंशन देने का एक अलग सिस्टम था, लेकिन तीसरे वेतन आयोग ने फिर एक रिकमेंड किया था कि सभी की पेंशन, चाहे वो आर्मी में हो या सिविलियंस में हो, जो उनकी आखिरी ड्राइंग सैलरी है, जब वो रिटायर हो रहे हैं तो आखिरी समय में उनको जितनी सैलरी मिल रही है उसका 50% दे दिया जाए, राइट। हालांकि वो 50% दिए थे उसमें डीए और ओरिजिनल और वो कई कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन एक सामान्य फार्मूला ये बनाया गया। जो आर्मी वालों की मांग है वो मांग एक डिफरेंट थी। अब मैं आता हूं वन रैंक वन पेंशन। जैसे होता यह है कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंचा, राइट। अब पहले दिन उसकी सैलरी मान लीजिए कि 50,000 रुपए है। अब वो 10 साल तक मान लीजिए कि इसी पद पर काम करता है ब्रिगेडियर, तो 10 साल में उसकी ये 50,000 की सैलरी बढ़ करके 60,000 तक हो जाएगी। अब इस 10 साल के बीच में हर साल प्रमोशन हो रहे हैं और लोग ब्रिगेडियर बनते जा रहे हैं और उनकी सैलरी किसी की 50 है, किसी की 51 है, किसी की 52 है, किसी की 54 है, इस तरह से अलग अलग सैलरी होगी जो जो जब जब बनेगा। तो रैंक तो उनकी एक ही है लेकिन सैलरी डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। जिसके 2 साल प्रमोशन हो गया तो उसकी सैलरी में ज्यादा हो गई होगी, जिसको 8 साल ब्रिगेडियर हुए बने हुए हो गए तो उसको उसकी सैलरी और ज्यादा हो गई होगी। तो अब कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि 2015 में ब्रिगेडियर बना और 2016 में रिटायर हो गया, मान लीजिए कि इनकी सैलरी हुई 52,000 रुपए, 52,000। तो अगर 50% दिया जाना है, अगर हम कहें कि जो लास्ट ड्राइंग सैलरी है उसका 50% दे दिया जाए तो 26,000 इनको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन जो 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहे हैं, जिनकी सैलरी 60,000 हो गई है, उनको जो पेंशन मिलेगी तो 60 का 50% कर लीजिए तो उनको 30,000 मिलेगी। तो इसको कैसे एक कर दिया जाए? बस एक का मतलब है कि ब्रिगेडियर से जो पद से जो रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो ब्रिगेडियर के पद पर 1 साल रहे हों या 10 साल रहे हों, लेकिन उनकी जो पेंशन होगी वो एक ही जैसी होगी। या तो सबको 26,000 कर दिया जाए, या सबको 30,000 कर दिया जाए, या बीच का 28 कर दिया जाए, जो भी सरकार फार्मूला बनाए, लेकिन रैंक के आधार पर जो पेंशन हो वो एक ही जैसी हो, बस केवल ये डिमांड है। और आर्मी बहुत समय से इसकी डिमांड कर रही है लेकिन यह डिमांड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो मित्रों न्यूज में यह बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ने यह एश्योर किया है हमारी सेना को कि एक रैंक एक पेंशन को सरकार लेकर आएगी, क्योंकि सरकार के लिए जो आर्मी है वो नौकरी से कहीं अधिक एक देशभक्ति का प्रतीक है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि वो नौकरी नहीं है, वो देशभक्ति है और हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो सरकार इसे लागू करेगी। तो ये है दोस्तों एक रैंक एक पेंशन। तो इसमें निश्चित रूप से जो इनिशियल स्टेज पर जो रिटायर हो जाते हैं उस रैंक में जाकर के, तो उनको काफी लाभ मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि जो लेट रिटायर होते हैं उसी रैंक में उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज की सैलरी को ही आधार बनाया जाएगा। ऐसे समय में चूंकि इसका पर्पज ही है जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको आर्थिक लाभ पहुंचाना, तो निश्चित रूप से वो जो फिक्स होगी जो पेंशन वो कुछ ना कुछ बेहतर ही होगी, और इसीलिए जो आर्मी मैन है इसकी मांग भी कर रहे हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसकी पृष्ठभूमि में आपको थोड़ी सी बताऊं, तो ये बात मैंने आपके सामने रखी है। दोस्तों, जो दूसरी जो खबर थी वो सर्विस टैक्सेस को लेकर के थी, जो पहले 12.36% थी, अब वो 14% अभी 1 जून से लागू हो गई है, क्योंकि जो बजट के प्रस्ताव होते हैं वो 1 जून से लागू हो जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में हमारी जो संसद है वो बजट को पारित कर देती है और 1 जून से फिर वो लागू होते हैं। आपको मालूम है कि बजट में इसका प्रोविजन किया गया था कि सर्विसेज टैक्सेस को बढ़ा करके 14% कर दिया जाए। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है मित्रों, ये जो सर्विस टैक्स है इसकी जो कहानी है भारत में, जो इसका इतिहास है वो बहुत लंबा नहीं है। शायद 8-10 साल पहले, जब उस समय चिदंबरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इसकी शुरुआत हुई थी, और उस समय बहुत थोड़े से वस्तुओं पर सर्विस टैक्स लगता था, सेवा कर जिसको हम कहते हैं, बहुत थोड़ी से, शायद शुरुआत इसकी 6 वस्तुओं से हुई थी, और टैक्स की जो दर भी थी वो शायद 6-7% के आसपास थी। अगले साल फिर 6 वस्तुओं में और 7-8 वस्तुएं शामिल करके उसकी संख्या को 14-15 कर दी गई, और फिर लगातार इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब तो इसके घेरे में बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, एजुकेशन तक इसके घेरे में आ चुकी है। ये जो सर्विस टैक्स है मित्रों, ये 14% है। 14% कहने का मतलब है कि यदि आप 100 रुपए कोई फीस चुकाते हैं या किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए देते हैं, तो उसमें 14 रुपए आपको अतिरिक्त सर्विस टैक्सेस देने होंगे। ये कम बड़ी राशि नहीं है, 14% बहुत बड़ी राशि है मित्रों। इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो देखिए क्या है, कि जैसे मान लीजिए कि अभी अभी न्यूज में ही था कि जैसे रेल में एसी का सफर है, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, इस पर सर्विस टैक्सेस लगेंगे, तो ये तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एसी हो, सेकेंड एसी हो, थर्ड एसी हो, इसमें जो सफर करने वाला जो वर्ग होगा अल्टीमेटली थोड़ा सा तो बेहतर वर्ग होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसके बावजूद वो सेकेंड क्लास एसी में सफर कर रहा है, तो उसको ठीक है। मान लीजिए कि वो 1,000 रुपए टिकट के देता है, तो अभी तक वो 12.3% देता था, मतलब एक तरीके से 123 रुपए देता था, तो अब वो 140 रुपए दे देगा 14% में, उसको थोड़ी सी राशि बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वहां होते हैं मित्रों, जहां की दूसरे लेवल पर भी ये टैक्सेस होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो मान लीजिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस है 20,000, तो अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या करेगा? उसके पास देखिए दो तरीके हैं। नंबर एक, कि या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस 20,000 रुपए में इस सर्विस टैक्स को शामिल कर लिया है, वो अपनी तरफ से सर्विस टैक्स दे देगा, आपसे नहीं ले रहा है, या फिर वो 20,000 रुपीज फीस रखेगा और प्लस 14% अलग से आपसे सर्विस टैक्सेस लेगा, जो लगभग लगभग 2,800 रुपए होंगे, 2,800 रुपीज होंगे। तो अब ऐसी स्थिति में होगा ये कि अब जो कोचिंग में जो स्टूडेंट जा रहा है या सर्विसेज के लिए जा रहा है, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं उसमें जा रहा है, या और भी दूसरे दूसरे क्षेत्र हैं, आप होटल में जाते हैं, रुकते हैं या खाते हैं, बहुत जगह इस तरह के सर्विसेज टैक्स अब शुरू हो जाएंगे, तो वहां जाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसमें अपर मिडिल क्लास का व्यक्ति हो या अपर क्लास का ही व्यक्ति हो, उसमें लोअर मिडिल क्लास का भी व्यक्ति हो सकता है या सामान्य आर्थिक स्थिति वाला भी व्यक्ति हो सकता है, तो वहां भी उसे 20,000 रुपए की फीस के बाद 2,800 रुपए अलग से सर्विस टैक्स देने होंगे। और अगर मान लीजिए कि 20,000 रुपए में वो सर्विस टैक्स शामिल ही कर लिया गया है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ सर्विस टैक्स लग नहीं रहा है, इस तरह से मत सोचिएगा। सपोज कल्पना कीजिए कि सर्विस टैक्स होती ही नहीं, होता ही नहीं सर्विस टैक्स, तो क्या करता? तो फिर ये 20,000 रुपए वाली जो फीस है, ये आपको 17,500 रुपए में वहां आपको एडमिशन मिलता, वो भी सर्विस टैक्स नहीं लेता, क्योंकि उसको नहीं देना है। तो जो सर्विस टैक्स, याद रखिए कि चाहे आपसे अलग से लिया जा रहा हो या नहीं लिया जा रहा हो, वो देना आपको पड़ता है, और इसी के आधार पर आप किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं आपसे फीस अलग से नहीं ली जा रही है, सर्विस टैक्स में शामिल अलग से नहीं लिया जा रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि वो जो इंस्टीट्यूट है उतना सर्विस टैक्स आपके बिहाफ पर अपनी तरफ से वो देगा, तब आप उसका सही मूल्यांकन कर पाएंगे। डेफिनेटली दोस्तों कि कंट्री को जैसे जैसे रेवेन्यूज की जरूरत होगी, एक सोशल वर्क के लिए या दूसरे डेवलपमेंट के लिए पैसों की जरूरत होगी, वैसे वैसे जो टैक्सेस का जो दबाव है, जो भार है, वो पब्लिक पर बढ़ता चला जा रहा है। और अमेरिका जैसे देशों में आप देखेंगे तो टैक्स सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि बाप रे क्या टैक्सेस होते हैं। यहाँ के प्रॉपर्टी टैक्सेस को देखिए कि एजुकेशन टैक्स और व्हीकल टैक्स और क्या क्या नहीं है, टैक्स की इतनी भरमार है कि अगर सामान्य व्यक्ति हो तो उसकी कमर टूट जाएगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना हैवी टैक्स यूएसए अमेरिका जैसे देशों में है। इसलिए सरकार के पास पैसा होता है तो सरकार फिर सोशल वर्क के लिए या डेवलपमेंट में भी उनका इस्तेमाल करती है। आफ्टर ऑल सरकार कहां से पैसा लाएगी दोस्तों, नागरिकों से ही पैसा लेती है। अब ये टैक्स की अपनी पॉलिसी के ऊपर है कि वो कहां से पैसा निकालती है। और भारत जैसे जो समाजवादी राष्ट्र है या कह लीजिए कि अभी जो डेवलपिंग स्टेज पर है, तो बट नेचुरल है कि उसके टैक्स का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि जो धनी वर्ग है उससे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लिए जाएं और जो आय की दृष्टि से जो निम्न आय वर्ग में आते हैं उन पर टैक्स का भार कम पड़े। इसीलिए दो तरह के टैक्सेस माने जाते हैं, आपको मालूम है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपकी दूसरी चीजें आती हैं जो वस्तु की कीमत में शामिल होती हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में आपको पता चलता है, जिसमें सर्विस टैक्स को आप इस तरह से आप देख सकते हैं। मित्रों, इसके बाद जो दो तीन जो छोटी छोटी खबरें हैं उनकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि भूमि अधिग्रहण विधेयक जो है उसके बारे में आपको मालूम ही है कि अभी तक संसद में पारित नहीं हो चुका है। अभी वो संयुक्त संसदीय समिति के पास है, प्रवर समिति के पास है कुछ इस तरह के विधेयक, और अब जो संसद का अगला अधिवेशन होगा उसमें फिर से विधेयक पेश किया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी 3 जून को इसका अध्यादेश की अवधि खत्म हो रही थी, इसीलिए राष्ट्रपति जी ने फिर से अध्यादेश जारी किया है ताकि वो कंटिन्यू कर सके। दोस्तों, एक और भी खबर थी और मैं समझता हूं कि कंटेंट के रूप में केवल आपको मालूम होना चाहिए कि आयकर रिटर्न फॉर्म को बहुत ज्यादा सरल बना दिया गया है। पहले ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता था, मतलब अगर आपको आयकर फॉर्म भरना है इनकम टैक्स का तो आपको बिना किसी वकील के मदद के आप नहीं भर सकते थे, और वकील वैसे आपकी मदद करेगा नहीं, कुछ ना कुछ फीस लेगा। ये सच पूछे तो हमारे तंत्र की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि हम चीजों को जटिल बना देते हैं, और जब हम चीजों को जटिल बना देते हैं तो पब्लिक उससे अपने को विड्रॉ करने लगती है और उसका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है। जब तक आप चीजों को सरल नहीं बनाएंगे, उसके अपनी पकड़ में ही चीजें नहीं होंगी, तब तक उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उन चीजों के साथ वो अपने इन्वॉल्वमेंट महसूस कर सके। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि आयकर रिटर्न को सरल बनाया गया है अब, ताकि हर नागरिक जिसको भी लगता है कि उसे आयकर रिटर्न भरना चाहिए वो बड़े आराम से अपना रिटर्न भर सकता है। मित्रों, इसके बाद फिर सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने खबर दी कि किस तरह से अभी जो अटल पेंशन योजना और ज्योति योजना और बीमा योजनाएं जो आई हैं, सुरक्षा योजना, इसमें 8 करोड़ लोग जुटे हैं, एक बहुत बड़ी सफलता है। और इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि डेफिनेटली ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा, मुझे लगता है, खासकर बीमा और ये जो सुरक्षा योजना आई है, और इसके बाद जो खासकर जनधन योजना है, डेफिनेटली बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है। देखते हैं कि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं वो कितने सतर्क होकर के और सही तरीके से काम कर पाती हैं। यदि जनता का एक बार इन लोगों ने भरोसा जीत लिया, जो सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी हैं जो ये काम कर रही हैं, तो ये बहुत बहुत एक क्रांतिकारी बात हमारे देश के लिए होगी। मित्रों, किसान चैनल के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने मन के बात के अंतर्गत इसे बहुत अच्छा नाम दिया, उसको मैं खासकर स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि किसानों का मुक्त विश्वविद्यालय। ये बहुत खूबसूरत शब्द है, किसानों का मुक्त विश्वविद्यालय, ये फ्रेज आपको याद हो जाना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, और आप इसका इस्तेमाल कहीं भी दूसरी जगह कर सकते हैं। एक जो बड़ी खबर है अभी के लिए, केवल एक सूचना मात्र कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसराइल जाने वाले हैं, अभी डेट नहीं आई है, और ये भारत के पहले कोई प्रधानमंत्री होंगे जो इसराइल की यात्रा पर जाएंगे, और ये हमारे जो विदेश नीति है उसमें बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि भारत शुरू से इसराइल के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रख सका है। हां, फिलिस्तीन के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे, और वहां के जो यासिर अराफात थे, हमारे जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ, तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे, उस समय भारत फिलिस्तीन को समर्थन भी करता था। इसराइल की जो डिफेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, जो खेती, जो टपक सिंचाई योजना सेना प्रणाली है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और भारत ने अब उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में, ये मैं समझता हूं कि इससे पहले भी छोटे मोटे कोशिशें हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी वो तो यू टर्न होगी, एक तरह से माइल स्टोन की तरह होगी। तो अब देखते हैं कि वो यात्रा की डेट क्या आती है और क्या निकलकर उससे आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का कि प्रधानमंत्री की इसराइल यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट इसराइल यात्रा होगी। मित्रों, एक मैगी को लेकर के एक संकट आ रहा है, धीरे धीरे खबरें बढ़ रही हैं कि किस तरह से मैगी में मिलावट को लेकर के अब केसेस दायर होने लगे हैं और एक चर्चा भी है। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, खासकर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिएगा, इसमें इसके साथ उपभोक्ताओं का अधिकार कानून भी जुड़ा हुआ है, इस पर आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। सिविल सर्विस के लिहाज से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण मुझे अब इस स्टेज पर आकर मालूम पड़ने लगा है। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस ऑडियो गाइडेंस को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। मैं आप लोगों के ईमेल अभी नहीं देख पा रहा हूं, उनके जवाब नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन विश्वास रखें कि आप लोग जो भी मेल भेज रहे हैं वे मेल सुरक्षित हैं, उन्हें मैं इत्मीनान से देखूंगा, पूरे ध्यान से पढ़ूंगा, जो भी उसमें महत्वपूर्ण आप लोगों की सलाह होंगी उन्हें नोट करके अपने पास रखूंगा ताकि अपने ऑडियो गाइडेंस में उन्हें शामिल कर सकूं, और जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके उत्तर दिए जाएंगे। इस बारे में आप लोग बिल्कुल भी संदेह न रखें और अपने उस क्रम को बनाए रखें। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।